الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लास के अंदर हम मुकदमा ए मारिफ अल कुरान पढ़ते हैं, और इसमें हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन के अहद में जमीउल कुरान का मौजू आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो पिछली क्लास की रीकैप के तौर पर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन के अहद में जमीउल कुरान ये कैसे हुआ था, और जिनको यानी हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया। एक बहुत अहम बात जो पहले भी हम कर चुके हैं और दोबारा भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से करते रहेंगे, वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और दूसरे सहाबा, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी वो थी कि नबी अलैहिस्सलाम जैसे इस दीन को लेकर के आए हैं वो दीन वैसे ही महफूज रहे, वो दीन वैसे ही महफूज रहे। तो उस दीन के जो अल्फाज हैं वो अल्फाज तो सबसे पहले कुरान मजीद के ही अल्फाज इस दीन के अल्फाज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन अल्फाज से जो दीन के अहकामात अखज किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, तो उन अहकामात की हिफाजत, ठीक है। तो अल्फाज की हिफाजत और अहकामात की हिफाजत, यही दीन की हिफाजत है, ठीक है। तो इसके लिए जो है फिर उन्होंने यानी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और बड़े बड़े जो है ना उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट किए अल्फाज की हिफाजत के लिए। ये वाला प्रोजेक्ट जो जमे कुरान का प्रोजेक्ट कहलाता है, और अहकामात की हिफाजत में भी सबसे पहले तो अल्फाज की हिफाजत होगी तो अहकामात की हिफाजत हो सकेगी ना, क्योंकि अहकामात इन अल्फाज से ही डिराइव्ड हैं। तो अल्फाज की हिफाजत इज पार्ट ऑफ अहकामात की हिफाजत वाला प्रोजेक्ट, लेकिन अहकामात की हिफाजत के लिए फिर जो है वो वहां वहां तक गए कि जाने कुर्बान करी, बड़ी बड़ी जो है वो लड़ाइयां लड़ी, और उसके लिए जो है वो बहुत बड़े बड़े यानी रिस्क उठाए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाए, यानी अपनी जानों को खाली रिस्क नहीं किया, दाव पे नहीं लगाया, बल्कि अपने घर वालों की जानों को भी दाव पे लगाया, अपने औलादों की जानों को भी दाव पर लगाया, अपने जो है वो बागात वगैरह की हिफाजत को भी दाव पर लगाया। कैसे? क्योंकि जब मानेईन ज़कात और जो है वो यानी झूठे नबियों का फितना पैदा हुआ और दूसरे किस्म के मुर्तदीन का फितना पैदा हुआ, तो उस वक्त जो इस्लामी रियासत थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गई थी। तो उनके लिए फिर उनसे लड़ाई के लिए लश्कर भेजने का मतलब ये था कि मदीना मुनव्वरा जो है ना ये एक्सपोज हो जाएगा दुश्मनों के सामने, ठीक है। तो ये नहीं कि खाली जो लड़ने जाएंगे उनकी जानें जो हैं वो यानी महफूज नहीं है, रिस्क पर हैं, बल्कि जो पीछे ठहर जाने वाले हैं उनकी जानें भी गैर महफूज हो गई, राइट। बीवी बच्चों की, राइट, बूढ़ों की, और जो जो इमलाक होते हैं, जो अमवाल होते हैं, वो भी गैर महफूज हो गए। किस लिए उन्होंने ये सारा काम किया? किस लिए उन्होंने ये सारा काम किया? दीन की हिफाजत के लिए, ठीक है ना, दीन की हिफाजत के लिए, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम इस दीन को लेकर के आए थे। तो अब हमारे सामने क्या चीज सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे नजदीक क्या है, दीन की हिफाजत, ठीक है। तो अब ये जो दीन की हिफाजत है, क्या इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे कर सकते हैं, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे कर सकते हैं या थर्ड प्रायोरिटी पे कर सकते हैं, इस वजह से कि हमें कोई और दीनी फायदा हासिल हो जाएगा, लोग जो है वो दीन के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो इस वजह से ना दीन की हिफाजत को हम थोड़ा सा भी साइड पे कर देते हैं, ठीक है। हम दीन की हिफाजत की जो मेहनत है ना वो बाद में कर लेंगे, पहले जो है ना वो दीन की इशाअत की मेहनत कर लें। दीन की इशाअत करने का मतलब क्या होता है, दीन की इशाअत यानी दीन फैल जाए, इसकी ये क्या क्या मतलब है दीन की के फैलाने का, ठीक है। कि लोग जो है वो, मजाक की बात करें तो लोग जो है वो हमारी तरह मुसलमानों की तरह की बिरयानी खाना शुरू कर दें, राइट, मुसलमानों की तरह के जो है ना वो खाने खाना शुरू कर दें, तो ये दीन की इशाअत हो जाएगी, ठीक है ना। हमारा कल्चर फैल जाएगा, हमारा खाने पीने का कल्चर फैल जाएगा, या हमारा जो है वो लिबास का कल्चर फैल जाएगा, या हमारा जो है वो खुशियां मनाने का कल्चर फैल जाएगा, तो ये दीन की इशाअत हो गई। नहीं, दीन की इशाअत, उम्मीद है कि अभी भी हम जो है वो ऐसे नहीं समझते कि दीन की इशाअत का मतलब यह है कि ईद उल फितर पे सिवैयां खाने का रिवाज दुनिया में आम हो जाए। चले, बिरयानी तो ईद उल फितर पे नहीं खाते ना, ईद उल अजहा पे बिरयानी नहीं खाते, लेकिन सिवई तो खाते हैं ना, ईद उल अजहा पर ही खाते हैं बहुत, सबसे ज्यादा, राइट। और ईद उल अजहा बगैर सिवई के होती नहीं है, तो लोग ज्यादा सिवई खाना शुरू हो जाए, बात समझ, सिवई पता है ना सबको क्या क्या चीज होती है, ठीक है ना। ये दीन की इशाअत नहीं है। दीन की इशाअत क्या चीज है, दीन की इशाअत क्या चीज है, ये आपसे पूछेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। दीन की इशाअत का मतलब क्या होता है, वी कैंट चेंज प्रायोरिटीज, इन्होंने लिखा है, वी कैंट चेंज प्रायोरिटीज विल जस्ट कॉज ट्रबल, लाइक वी कैन स्प्रेड दीन बट वी कैंट बेनिफिट दीन, वी कैन स्प्रेड दीन बट वी कैंट बेनिफिट दीन। बहुत अच्छी बात करी आपने माशाल्लाह, कि हम दीन को फायदा नहीं पहुंचा सकते, हम दीन को फैला सकते हैं लेकिन हम दीन को फायदा नहीं पहुंचा सकते। क्या मतलब, कि दीन को जो है ना वो इम्प्रूव कर दें 21st सेंचुरी के लिए, उसको काबिल कबूल बना दें या उसको अपग्रेड कर दें दीन को, तो दीन का फायदा हो जाएगा। नहीं, हम दीन को फायदा नहीं पहुंचा सकते, दीन हमारे फायदे के लिए आया है, दीन हमें फायदा पहुंचाने के लिए आया है, हम दीन को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए कि दीन को बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो दीन की इशाअत का मतलब क्या होता है, कि लोग जो है ना वो दीनी यानी नजरिए पर आ जाएं। इशाअत का मतलब अब नहीं पता तो इशाअत का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है, स्प्रेड करना, स्प्रेड का मतलब तो पता है ना, ठीक है। तो भाई दीन की इशाअत का मतलब ये है कि लोग दीन के नजरिए पर आ जाएं, ठीक है ना, जो दीन कहता है करने के लिए वो अल्लाह का हुक्म समझना शुरू कर दें, और जिस चीज से मना करता है अल्लाह ताला का हुक्म उसको समझना शुरू कर दें, ठीक है, कि अवामिर और नवाही ये मान जाएं कि भाई यही है दीन, ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर दें, ये जो है वो दीन की इशाअत, ये दीन की इशाअत है, ठीक है ना। दोबारा से बोलना पड़े तो दोबारा भी बोलेंगे कि ये दीन की इशाअत है, कि लोग अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर, ठीक है ना। तो अब हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके हम लोगों को इस नजरिए पे कैसे ला सकते हैं कि वो अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर दें, ठीक है ना, कि वो अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर दें। उसके लिए हम अल्लाह के हुक्म को तो खुद तोड़ रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते ना, ये मतलब दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आज के दौर के अंदर तरीका चल रहा है कि दीन के हुक्म को तोड़ करके लोगों को दीन के ऊपर लाने की कोशिश करना, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला जो मसला आता है वो औरतों के इख्तलात, राइट, बेपर्दगी, औरतों के इख्तलात के जरिए से जो है ना वो दीन के मैसेज फैलाया जा रहा है, सामने औरतें भी बैठी हुई हैं, मर्द भी बैठे हुए हैं, और जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटेलेक्चुअल किस्म का जो है वो लेक्चर दिया जा रहा है, और कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये एब्सोल्युटली दिस इज यानी कॉन्ट्रडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। तो सहाबा कराम जो है ना वो ये वाला दिन उन्होंने महफूज नहीं किया था, जिस दिन के ऊपर हम जो है वो यानी मेहनतें कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो उसूल बनाया वो ये था कि हम जो नई चीजें हैं ना वो लिद दीन के लिए तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिद दीन नहीं करेंगे, हम दीन को चेंज नहीं कर सकते, दीन की हिफाजत ये नंबर वन प्रायोरिटी है। तो इस वजह से जो कोई भी चीज जो हम इख्तियार करेंगे, जो नई चीज होगी, वो हम फिद दीन नहीं करेंगे बल्कि हम लिद दीन करेंगे, दीन के लिए करेंगे, ठीक है। और लिए का मतलब ये होता है कि जो दीन है उसको प्रिजर्व करने के लिए करेंगे, उसको अपग्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। दीन को हम ना अपग्रेड करेंगे, ना हम डाउनग्रेड करेंगे, ना हम कुछ ग्रेड करेंगे। दीन जैसा आया है वैसा ही हम रखेंगे, ठीक है। तो अब इस सिलसिले में जो दूसरी बड़ी मेहनत हुई यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो क्या कहते हैं दौर जब गुजर गया, तो उसके बाद फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर इसकी ऐसा जो है वो जरूरत महसूस नहीं की गई, लेकिन अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर फिर इस बात की दोबारा से जरूरत महसूस की गई। तो उसकी तफसील क्या है, फरमाते हैं कि इस मौके पर जमे कुरान के सिलसिले में हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जैसा कि पीछे जिक्र आ चुका है। वो खुद हाफिज कुरान थे। अच्छा सॉरी, नहीं ये तो हम पढ़ चुके थे ना, ये तो हम जैद बिन साबित के तरीक़ेकार की बात पढ़ना शुरू हो गए। हजरत उस्मान गनी रतान के अहद में जमे कुरान पेज नंबर 40 के ऊपर आइए है कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन खलीफा बने तो इस्लाम अरब से निकलकर रोम और ईरान के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुका था। तो सबसे ज्यादा जो जो एक्सपेंशन हुई ना वो फिर हजरत उस्मान गनी रतान के दौर में हुई कि जिसके अंदर वो यानी इस्लाम की सरहदें जो है वो तकरीबन सिंध तक पहुंच चुकी थी, जहाँ यानी जिसको अब पाकिस्तान कहा जाता है ना। तो दरियाए सिंध का जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है वो एक्चुअली जो है वो कश्मीर से लेकर के कराची तक, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी दरियाए सिंध का पैथ बनता है। तो यहाँ तक जो है वो पहुंच चुका था सिंध। तो अब जो है वो तो खाली एक छोटे से प्रोविंस का नाम है ना, लेकिन असल में तो इसका ताल्लुक दरियाए सिंध के साथ है। बहरहाल वेस्ट के ऊपर जो है ये मोरक्को मोरिटानिया बिल्कुल जो मगरब कहलाता है यानी एक्सट्रीम वेस्ट, जिसके बाद फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है, ओकियानूस वगैरह, तो वहां तक जो है वो इस्लामी सल्तनत पहुंच चुकी थी। और हर नए इलाके के लोग जब मुसलमान होते थे तो वो उन मुजाहिदीन इस्लाम या उन ताजरों से कुरान करीम सीखते कि जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत हासिल हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि आज के दौर में है ना, जब ये किसी मुल्क को फतह करते हैं काफिर, ठीक है, तो उस मुल्क को फतह करने के बाद जो है वो वहाँ पे सबसे पहले अपनी कॉरपोरेशंस को एंटर करते हैं, अपने बिजनेसेस को वहाँ पे एंटर करते हैं, ताकि वहाँ से वो तेल निकालें, वहाँ से जो है वो इंसानों का भी तेल निकालें और ज़मीन का भी तेल निकालें और अपने जो है ना वो इंडस्ट्रीज के अंदर उसको इस्तेमाल करें, राइट। तो ये एक इंसानी यानी मुआशरे का तरीका है, ठीक है। इंसानी मुआशरा जो है वो उसी तरीके से पनपता है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस वो फाते हैं तो भाई उनका हक है कि वहां पे तिजारत करें जा करके। तो उसी तरह से मुसलमान भी जब फतह करते थे तो साथ साथ जो है वो उनके ताजर भी जो है वहां जा रहे होते थे। तो ये ताजर लेकिन ऐसे ताजर नहीं होते जैसे कि आजकल के ब्लैक वाटर के ताजर होते हैं या अमेरिका यूरोप वगैरह के जो झूठे और मक्कार फरेबी और खून के प्यासे। ये जो मुसलमान ताजर होते थे इनमें फर्क ये होता था कि ये सच्चे होते थे, सच्चे होते थे, ठीक है। तो इनको देख करके और इनके साथ डीलिंग करके जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फिर लोग मुसलमान होना शुरू हुए थे। फतह करने के बाद लोग बड़े अरसे तक लोग इस्लाम में दाखिल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे। तो इस वजह से ना यानी एक ऐसा जमाना था कि जबकि इस्लामी मुमलिकत के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो कहते हैं कि 20% से भी कम थी, 20% से भी कम, बाकी 80% जो है वो गैर मुस्लिम होते थे, ठीक है। तो ये थी इस्लामी हुकूमत, यानी ये मुसलमानों की हुकूमत तो थी खैर, लेकिन ये मुसलमान मुल्क नहीं थे, ये इस्लामी मुल्क थे। आजकल तो हमारा मामला ये होता है ना कि हम मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क नहीं है, क्योंकि इस्लाम का कानून नहीं है, लेकिन मुसलमान चूंकि मेजोरिटी में है तो इस वजह से उनको जो है वो हम इस्लामिक कंट्रीज कह देते हैं, हालांकि उनको मुस्लिम कंट्रीज कहना चाहिए खाली, ठीक है, यही मुस्लिम स्कूल वाला भी यही मामला है। तो वहां पर उल्टा मामला था कि मुसलमान कम होते थे लेकिन इस्लाम होता था, क्योंकि निज़ाम इस्लाम के मुताबिक वो चला रहे होते थे, अपनी जिंदगी का भी और अपने इदारों का भी निज़ाम इस्लाम के मुताबिक चल रहा होता था। तो इनसे फिर ना जो नए मुसलमान होने वाले लोग थे वो कुरान करीम सीखते थे, कि जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत नसीब हासिल हुई थी। उधर पीछे आप पढ़ चुके हैं कि कुरान करीम 7 हरूफ पर नाजिल हुआ था, और मुख्तलिफ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ क़िराअतों के मुताबिक सीखा था, इसलिए हर सहाबी ने अपने शागिर्दों को इसी क़िराअत के मुताबिक कुरान पढ़ाया। जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 7 हरूफ के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ था, तो 7 हरूफ का मतलब ये था कि ये मुतअद्दिद क़िराअतें थीं, क्योंकि जो उलमाए उम्मत हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करी है, जिसको कैश एक्चुअली इतनी तफसील में हमने पढ़ा भी नहीं था। डिस्कशन क्या करी है कि ये क़िराअतें और हरूफ क्या अलग अलग चीज़ थी या ये एक ही चीज़ थी, और जो सबसे यानी बिला गुबार और सबसे ज़्यादा जो है वो यानी जमहूर का ओपिनियन कह रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो है वो सेंसिबल और समझ में आने वाला ओपिनियन कह रहे हैं, वो ये कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मुतअद्दिद क़िराअतें और मुतअद्दिद हरूफ इंटरचेंजेबली ये फिर लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो मुख्तलिफ सहाबा कराम ने इसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ क़िराअतों के मुताबिक सीखा था, इसलिए हर सहाबी ने अपने शागिर्दों को इसी क़िराअत के मुताबिक कुरान मजीद पढ़ाया, जिसके मुताबिक खुद उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था। इस तरह क़िराअतों का ये इख्तिलाफ़ दूर दराज ममालिक तक पहुँच गया। जब तक लोग इस हकीकत से वाकिफ थे कि कुरान करीम 7 हरूफ पर नाजिल हुआ है, उस वक्त तक इस इख्तलाफ से कोई खराबी पैदा नहीं हुई, लेकिन जब ये इख्तलाफ दूर दराज ममालिक में पहुंचा, अब इमेजिन करें ना, दूर दराज ममालिक का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मक्का मदीना मुराद नहीं है, कि मक्का मुकरमा और उससे दूर दराज जो है वो मदीना मुनव्वरा है, उससे दूर दराज जो है वो रियाज है, उससे दूर दराज नहीं, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, राइट। और उस जमाने में यानी कोई अखबारी निज़ाम भी नहीं होता था कि जी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी नहीं होता था, कोई जो है वो इंटरनेट का भी सिस्टम नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो अब जो है वो खबर जो है वो कैसे फैलती थी ना, टाइम लगता था उसके अंदर, यानी घोड़े के ऊपर सवार होकर, वो भी पूरा निज़ाम बाद में बना है, जिसके अंदर के चंद दिनों के अंदर खबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी, उसमें भी बनने में टाइम लगा था, और वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं था। तो दूर दराज ममालिक तक जब लोग पहुंचे तो ये बात उनमें पूरी तरह मशहूर ना हो सकी, ठीक है, कि कुरान मजीद जो है वो जेन्युइनली हर तरीके इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि 7 हरूफ पर नाजिल हुआ है। तो उस वक्त फिर लोगों में झगड़े पेश आने लगे, बाज लोग अपनी क़िराअत को सही और दूसरे की क़िराअत को गलत करार देने लगे। इन झगड़ों से एक तरफ तो ये खतरा था कि लोग कुरान करीम की मुतवातर क़िराअतों को गलत करार देने की संगीन गलती में मुब्तला होंगे, ठीक है। अब हर क़िराअत जो थी ये तवातुर के साथ उम्मत के पास मुंतकिल हुई थी, और जो तवातुर के साथ बातें मुंतकिल हुई हैं उनका इनकार हमें पता है, हम पिछली पूरी की पूरी सीरीज जो कि ईमान और कुफर की किताब की हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ रहा है कि जो जो उलूम जो बातें तवातुर के साथ आगे पहुंची होती है ना, उनका इनकार करना जो है ये कुफर तक इंसान को पहुंचा देता है, ये कुफर हो जाता है अगर उसने जानबूझ करके इनकार किया है। उसमें सॉफ्ट ओपिनियन ये है कि हाँ बगैर इल्म के इनकार कर दिया, तो फिर उसके लिए गुंजाइश निकल सकती है कि उसको समझाया जाएगा कि भाई ये तवातुर के साथ था, आप इसका इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, फिर भी अगर वो इनकार करे तो फिर वो काफिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बात एहतियात के दर्जे में इस तरह से कही जाती है कि कुफर तक पहुंचा देती है ये चीज, कि आप तवातुर के साथ जो चीज़ पहुंची है, कतई सबूत और कतई दलाला इन्हीं चीज़ों को कहते हैं ना, तो उसका मुनकिर जो होता है वो काफिर हो जाता है। तो अब चूंकि इल्म नहीं था तो लोग एक दूसरे की किरातों को जो कि तवातुर के साथ पहुंची थी उम्मत तक, उनका जो है वो इनकार करना शुरू हो गए, इल्म नहीं था ना। तो दूसरे ये के सिवाय हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिखे हुए एक नुस्खे के मदीना तैयबा में मौजूद था, पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा मियारी नुस्खा मौजूद नहीं था जो पूरी उम्मत के लिए हुज्जत बन सके। ठीक है ना। हुज्जत का मतलब क्या होता है कि भाई इसको जो है ना हमने स्टैंडर्ड बनाना है और इसकी बुनियाद पर जो है फिर हमने कोई काम करना है, इसको हुज्जत कहते हैं। ठीक है, तो किसी के हक में कोई चीज हुज्जत बन जाती है और कोई चीज खिलाफ हुज्जत जाती है। क्या होता स्टैंडर्ड
तो पढ़ रहे थे कि कोई ऐसा मेयारी नुस्खा मौजूद नहीं था जो पूरी उम्मत के लिए हुज्जत बन सके, क्योंकि दूसरे नुस्खे इनफरादी तौर पर लिखे हुए थे। ठीक है, और इनफरादी अमल जो होता है ना वो हुज्जत नहीं होता। ठीक है, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का इनफरादी अमल जो है वो हुज्जत है। बाकी फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर इजमाई अमल हुज्जत बना, और इजमाई का मतलब होता है कि जमात जिस बात पे मुत्तफिक हो जाए वो हुज्जत बन गया ना। तो हमारी दीन में हुज्जतें क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हुज्जत कहा जाता है? कुरान मजीद, हदीस मुबारक, यानी नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल व अफ़ाल और तकारीर। ठीक है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम ये हदीस मुबारक कहलाती है। तीसरी चीज पर क्या है, इजमाए सहाबा, इजमाए सहाबा। और इजमा जो होती है वो इनफरादी चीज नहीं होती, वो यानी वो होती है जिसके ऊपर इत्तेफाक हो जाए एक जमात का। ठीक है, बेशक अमल किसी एक सहाबी ने किया हो लेकिन बाकी सहाबा ने उसको रद्द नहीं किया, तो ये भी इजमाए सहाबा कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं एक ही सहाबी ने एक अमल किया था तो ये तो इनफरादी अमल हो गया ना सहाबी का। नहीं, सहाबा की जमात की खासियत ये थी कि वो गलत चीज को रद्द किए बगैर रहते नहीं थे। जो चीज वो गलत समझते थे उसको डंके की चोट पे उसका इनकार करते थे, उसकी मुखालफत करते थे। ठीक है ना, तो इस वजह से उनकी मुखालफत का ना होना ये उनका इत्तेफाक कहलाता है। बेशक वो एक्सप्लिसिटली जो है वो इत्तेफाक ना करें लेकिन इम्प्लिसिटली भी उनका इत्तेफाक कहलाता है, इसको इजमाए उम्मत कहते हैं। ठीक है, अकली दलील भी क्या हुज्जत कहलाएगी, अकली दलील भी क्या हुज्जत कहलाएगी? नहीं, अकली दलील तो एक इंसान की अपनी ज़ाती अकल के तौर पर बात हुई ना। ठीक है, अगर आप अकली दलील से यह मुराद ले रहे हैं कि किसी एक इंसान ने अपनी अकल से कोई फैसला कर लिया तो क्या ये भी उस हुज्जत कहलाएगा? नहीं, ये कलेक्टिव तो चीज़ नहीं हुई ना, तो एक इंडिविजुअल का ही अमल हुआ ना कि उसने अपनी अकल से कोई फैसला कर लिया। ठीक है, तो दीन के अंदर तो कलेक्टिव चीज हुज्जत होती है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की तो इनफरादी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत की कलेक्टिव। ठीक है, तो अच्छा, और फिर उन उन जो लोगों के इनफरादी नुस्खे थे तो उनके अंदर सातों हरूफ को जमा करने का कभी कोई एहतमाम नहीं था। ठीक है, बस एक ही किरात के मुताबिक किसी ने अपना नुस्खा लिखा था, जो किरात उसने नबी अलैहिस्सलाम से सीखी थी। इसलिए इन झगड़ों के तस्फिये की काबिल एतमाद सूरत यही थी कि ऐसे नुस्खे पूरे आलम इस्लाम में फैला दिए जाएं जिनमें सातों हरूफ जमा हो। ठीक है, यानी जो सातों हरूफ के ना आप अगर अपने पास लिख लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा, बाद में भी आपको याद करने में, याद रखने में, समझने में, समझाने में आसानी होगी कि सातों हरूफ के लिए जो है ना वो हमारे समझने के लिए सबसे आसान टर्मिनोलॉजी क्या होगी है, क्या होगी? मुतअद्दिद क़िराअतें, मुतअद्दिद क़िराअतें। ठीक है, तो ये मुतअद्दिद क़िराअतें जिन एक ही नुस्खे के अंदर जमा हों तो ऐसे नुस्खे बनाए जाएं और उन्हें देखकर ये फैसला किया जा सके कि कौन सी क़िराअत सही और कौन सी गलत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में यही अजीम शान कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, इस कारनामे की तफसील रिवायात हदीस से मालूम होती है कि हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आर्मेनिया और आजरबाईजान के महाज पर जिहाद में मशगूल थे, यानी आर्मेनिया आजरबाईजान जानते हैं ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उसमें भी जो है वो यानी नॉर्थ थोड़ा सा यानी मिडल ईस्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड के ऊपर ये हैं, ठीक है। तो सहाबा वहां वहां जाकर के जिहाद कर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि लोगों में कुरान करीम की किरातों के बारे में इख्तिलाफ हो रहा है। चुनाचे मदीना तैयबा वापस आते ही वो सीधे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के पास पहुंचे और जाकर अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, कबल इसके कि ये उम्मत अल्लाह की किताब के बारे में यहूद व नसारा की तरह इख्तलाफात की शिकार हो, आप इसका इलाज कीजिए, ठीक है, आप इसका इलाज कीजिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने पूछा, बात क्या है, ठीक है, क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो कि ये उम्मत यहूद व नसारा की तरह अल्लाह की किताब के बारे में इख्तलाफ कर रहे, क्योंकि उन्होंने इख्तलाफ किया, किसी ने जो है वो अपना कोई सेक्ट बनाया और किताबुल्लाह को ही चेंज कर लिया, आसमानी किताबें तो उनके पास भी थी ना, उसको ही चेंज कर लिया, किसी ने दूसरा सेक्ट बनाया, उसने अपने हिसाब से जो है वो किताब को बना लिया। तो ये हुज़ैफ़ा बिन यमान रतान जो है वो सहाबी रसूल हैं, बड़े यानी पाए दर्जे के सहाबी रसूल हैं, इन्होंने भी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून के ऊपर तकिया नहीं किया, ठीक है, कि ये अल्लाह ताला का वादा है, मुझे किया मैनू की राइट, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह की किताब है, अल्लाह हिफाजत करेगा, नहीं, बल्कि सुन्नत के ऊपर अमल किया कि एकल व तवक्कल, कि जब असबाब मौजूद हैं और वो असबाब जो है वो खिलाफ शरीयत असबाब नहीं है और खिलाफ अकल असबाब नहीं है, तो वाई शुडंट वी यूज दोज असबाब, राइट, हम वो असबाब क्यों ना इख्तियार करें, हमें तो सवाब जो है वो असबाब इख्तियार करने के ऊपर ही मिलेगा ना, जन्नत की करेंसी जिसको सवाब कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी बुनियाद पर हमें जन्नत के अंदर दराजात मिलेंगे, किसी बड़े का कुर्ब नसीब होगा, तो वो किस बुनियाद पर मिलेगा, अमल करने के ऊपर मिलेगा ना, राइट, नियत करने के ऊपर, और फिर नियत के ऊपर जितना अमल कर सकते हो उतना अमल करने के ऊपर सवाब मिलता है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि हाँ भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह का घर है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह का दीन है, अल्लाह ही जाने, इसकी हिफाजत करना, राइट, तो फिर नाउज बिल्ला यानी ऑफ कोर्स इट डजंट मीन एनीथिंग, लेकिन क्या अल्लाह को सवाब चाहिए, राइट, बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि क्या अल्लाह को सवाब की जरूरत है, अल्लाह को तो सवाब की जरूरत नहीं है ना, कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत करे, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करे, अल्लाह अपनी किताब की हिफाजत करे, नहीं, सवाब की जरूरत तो हमें, तो अगर हम अमल नहीं करेंगे तो सवाब क्यों मिलेगा, ठीक है, किस किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए वही बात जो पिछली क्लास में हो चुकी है, अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड दोज अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यानी जायज, ठीक है ना, जिस शरीयत के अंदर उनका उनकी ममानियत ना हो और वो अकल के मुताबिक भी होने चाहिए, ठीक है ना, यानी ऐसा हर सबब आप जो है वो जायज सबब भी आप इख्तियार नहीं कर सकते जो कि बेअकली, ठीक है, मिसाल के तौर पर ऊंट को आपने, ऊंट की हिफाजत करनी है कि कोई चुरा के ना ले जाए, राइट, ऊंट की मिसाल ही थी ना इस हदीस के अंदर, कि ऊंट की, ऊंट को कोई चुरा के ना ले जाए, ठीक है। तो अब जायज तरीका आपने इख्तियार किया कि भाई ऊंट को आप अपने एकाल से बांध दें ताकि कोई उसको चुरा के ना ले जाए, ठीक है ना, तो ये जायज बात थी ना कि भाई आप उसको बांध दें, ऊंट 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 की गर्दन को बांध दें। और एक और भी तो जायज तरीका है कि ऊंट को कोई चोरी ना कर सके, क्या क्या तरीका है ऊंट को कोई चोरी ना कर सके, वो भी जायज तरीका, राइट, वो जायज तरीका क्या है कि आप ऊंट को जबा कर दें, है ना, ऊंट को जबा कर दें, अब भी ऊंट को कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जबा करेंगे फिर उसकी बोटियां बनाएंगे, वो बोटियां सारी की सारी आप खेमे के अंदर ले आएंगे, घर के अंदर ले आएंगे, अब कैसे चोरी करेगा कोई, वो तो ऊंट बाहर था तो चोरी करने की पॉसिबिलिटी थी ना, चोरी हो जाने की पॉसिबिलिटी थी, तो आप ऐसा करें जबा करके बोटियां बना करके घर के अंदर ले आए ऊंट को, अब कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, और ये आपने कोई नाजायज काम तो नहीं किया, जबा करना ऊंट को 100% जायज काम है ना शरीयत के अंदर, क्या ख्याल है, नाजायज नहीं है क्या ये, लेकिन शरीयत में तो जायज है, क्या ये अकल का तकाजा है, क्या अकल के मुताबिक ये चीज जो है वो सेंसिबल है कि एक ऊंट की हिफाजत के लिए आप उसको जबी कर दें और कल को फिर रोए पीटें कि मेरे पास जो है सवारी के लिए ऊंट का खत्म हो गया है, अब जो है मैं किसी से जा करके मैं यानी ऊंट जो है वो भीख मांग करके लेकर के आऊंगा, या जो है मैं किसी से उधार में ऊंट लेकर के आऊंगा ताकि मैं सवारी कर सकूं, क्योंकि मैंने तो ऊंट को ज़बह कर दिया हिफाजत की खातिर। क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि जायज असबाब भी जो होते हैं ना, वो भी अकल के मुताबिक होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए जैसे कोरोना वायरस के जमाने में हमने जायज असबाब इख्तियार किए। रिकनेक्ट भी हो गया। अच्छा तो इसका नाम, अच्छा ये उन्होंने कहा, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने बेसिकली आकर के जो बात करी कि भाई जब हमारे पास एक निज़ाम है, खलीफा हैं और जो है वो हुफाज मौजूद हैं, तो हम इन असबाब को, जायज़ असबाब को इस्तेमाल क्यों ना करें। बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरान मजीद की हिफाजत का, लेकिन हमें तो सवाब चाहिए ना, ठीक है, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ऐसी हमारी सोच बन जाए तो आज भी हम बहुत सारे काम जो कि हम नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम करना शुरू हो जाए, ठीक है। आज तो बल्कि एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रहा था, उनका कॉल किसी ने भेजा, आप शेयर करने का इरादा भी था लेकिन बस भाग दौड़ में वक्त निकल रहा है, कि वो शख्स इंतहाई बुरा शख्स है जो कि, मैं बल्कि पढ़ के सुना होता हूँ इसलिए ये बड़ा अहम अहम वो कॉल है, हदीस तो नहीं है लेकिन आसार में जरूर वो आता है। क्या है, एक मिनट, हाँ, बेकार आदमी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अतान फरमाते हैं कि मुझे वो शख्स सख्त नापसंद है जिसे मैं फारिग देखूं, ना वो दुनिया के किसी काम में मसरूफ हो और ना आखिरत के काम में मसरूफ, राइट? यानी दुनिया में फायदा मंद काम में, दुनिया में जो उसको जो हकीकी फायदा पहुंचाने वाले काम है, ना वो ऐसा कोई काम कर रहा है और ना जो है वो आखिरत के किसी काम के अंदर मसरूफ है, ठीक है ना? तो वो फारिग है, यानी वो दुनिया का भी फायदा हासिल नहीं कर रहा, आखिरत का भी फायदा हासिल नहीं कर रहा, इसको, ऐसे इंसान को फारिग कहते हैं, ठीक है। तो आज के दौर के अंदर ऐसा इंसान कौन होता है कि या तो वो बस दीवार को तक रहा है, ठीक है ना, या तो वो दीवार को तक रहा है, या वो आसमान को तक रहा है, या वो सोया पड़ा हुआ है, ठीक है ना, या जो है वो फोन के ऊपर ब्राउजिंग कर रहा है, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहा है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी वीडियो, तीसरी से चौथी वीडियो, राइट? तो ऐसा शख्स जो है ना, वो आज के दौर में ऐसा शख्स फारिग होता है। आज के दौर में दीवारों को तकने वाले जो है ना, वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, वो आपको पागलखाने के अंदर तो मिलेंगे, पागलखाने के बाहर नहीं मिलेंगे दीवारों को तकने वाले, ठीक है ना। लेकिन फोन को तकने वाले बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी मकसद के फोन को तकने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, और हम भी उनमें शामिल होंगे यकीनन, ठीक है। तो सख्त नापसंदीद ना सख्त नापसंदीदा अब्दुल्ला इब्न मसूद जो कि यानी फकीहुल उम्मत, राइट, सहाबा में से। तो काम करें ना भाई, काम करें, राइट, फारग ना बैठे। अगर फारग बैठेंगे ना तो फिर शैतान जो है ना वो बड़ा सख्त किस्म का बिजी हो जाएगा आपके साथ, बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा आपके साथ, इंगेज हो जाएगा फुल फ्लेज्ड, क्या मतलब, वो खूब फिर आपको जो है ना वो वसाविस के अंदर मुबतला करेगा, खूब वसाविस के अंदर मुबतला करेगा, ठीक है। और वो वसाविस किस किस्म के होंगे, शैतानी वसाविस की किस्में होती हैं। एक वसाविस होते हैं कि वो आपको जाहिरी गुनाहों के अंदर मुबतला करेगा, ठीक है ना, जाहिरी गुनाहों के ख्यालात डालेगा, कभी नाउज बिल्ला औरतों के ख्याल डालेगा, औरतों को जो है वो मर्दों के ख्याल डालेगा, कभी जो है वो नाच गाने के ख्याल डालेगा, कभी जो है वो शराब कबाब के ख्याल डालेगा, कभी क्रिकेट के ख्याल डालेगा, कभी गिरगिट के ख्याल डालेगा, ठीक है ना। ये शैतानी वसाविस होते हैं एक किस्म के। और दूसरे शैतानी वसाविस क्या होते हैं कि वो आपको बिला वजह की टेंशन में मुबतला करेगा, बिला वजह की टेंशन में मुबतला करेगा, है कि माजी की टेंशन, ओ हो जो मैंने गुनाह किए हैं तो अब इन गुनाहों की वजह से जो है ना मैं तो मारा गया, मौलवी साहब कह रहे थे कि हर गुनाह की जो है ना वो सजा मिलती है, तो मैं तो मारा गया क्योंकि मैंने इतने गुनाह किए, ठीक है ना। वो ये बात भुला देगा कि भाई अगर मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, ठीक है ना, एंड आई कैन हैव अ क्लीन स्लेट, इस बात को वो भुला देगा और वो माजी के टेंशन्स में मुबतला करेगा, किसी को जो है वो हाल के टेंशन्स में मुबतला करेगा, ये देखो ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, और कि ये सब खत्म होने वाला है, और है हाल के टेंशन में मुबतला करेगा, और किसी को जो है वो मुस्तकबिल के टेंशन में मुबतला करेगा, ठीक है ना। तो शैतान के वसाविस दो किस्म के होते हैं, एक वो गुनाहों के वसाविस में और दूसरे जो है ना वो टेंशंस के अंदर, फिक्रों के अंदर। बेसिकली उसका काम ये है कि आपको जो है ना वो कंज्यूम कर दे, आपको जो है वो किसी काबिल ना छोड़े, आपको मरीज बना दे, आपकी जिंदगी को जो है ना वो जाया करवा दे आपके हाथ, ठीक है ना। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है, काम करो काम करो काम करो, ठीक है ना। ये दुनिया हमें, ये दुनिया काम की जगह है, आराम की जगह नहीं है। आराम की जगह अल्लाह ताला ने कब्र बनाई है, कब्र में जाके आराम करना, इस दुनिया के अंदर काम करना है। इस दुनिया में आराम करने का मकसद सिर्फ काम करना है, ताकि जिस्म जो है ना वो इस काबिल हो जाए कि उठ करके फिर से काम कर सके, उठ करके फिर से काम कर सके। इस वजह से हम आराम करते हैं, हम बतौर मकसद के आराम नहीं करते, बतौर मकसद के आराम नहीं करते, बतौर मकसद तो हमारा सिर्फ और सिर्फ काम का है, आराम भी काम के मकसद से, ठीक है। तो ये है ईमान वाले की जिंदगी, जिसको के कब्र की हिसाब किताब का भी यकीन है और जिसको आखिरत के हिसाब किताब का भी यकीन है, ये होता है ईमान वाला, तो वो काम करता है। तो असबाब हैं उनको इख्तियार करें और काम करें, काम करें और काम करें। समटाइम्स वेन वी आर नॉट फ्री स्टिल शैतान गिव्स वसाविस लाइक इन नमाज, गोइंग टू शॉप और सिटिंग इन कार, इज देयर एनी सोल्यूशन टू इट। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, समटाइम्स वेन वी आर नॉट फ्री, वी थिंक वी आर नॉट फ्री, वी थिंक वी आर नॉट फ्री, ठीक है ना। और ये शैतान का धोखा होता है कि हम फारिग होते हैं, लेकिन वो इस धोखे में मुबतला कर देता है कि आप तो फारिग नहीं है, आप तो मसरूफ हैं। असल में हम फारिग हैं, लेकिन धोखा शैतान का ये लगा हुआ है कि हम मसरूफ हैं, हालांकि हम मसरूफ नहीं है। देखें ऊपर सैयद मोहम्मद बिन नोमान साहब ने डायरेक्ट मैसेज में जो अंग्रेजी की कहावत लिखी थी ना, ठीक है, वो बड़ी बड़ी काम की कहावत है, ठीक है ना। वो क्या है, एम्प्टी माइंड इज द डेवल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड इज द डेवल्स वर्कशॉप, ठीक है ना। और यही हकीकत है, जो माइंड एम्प्टी नहीं होता ना, उसमें डेवल अपनी वर्कशॉप नहीं बना सकता। हमारा मसला ये होता है कि हम काम जो कर भी रहे होते हैं ना, तो हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, हम अपने जहन के साथ उसके अंदर मुतवज्जे नहीं होते, फोकस नहीं होते, हम इंतहाई डिस्ट्रैक्टेड तरीके से और इंतहाई डिफोकस्ड हालत में काम कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चूंकि आप डिफोकस्ड हैं, तो आपके हाथ तो मसरूफ हैं, लेकिन आपका जहन तो मसरूफ नहीं है ना। आपका जहन जो है ना, उसके अंदर लूप होल्स बने हुए हैं, उसके अंदर दरारें बनी हुई हैं बहुत सारी, थोड़ा सा जो है वो अपने काम की तरफ हो रहा है, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल अगर जहन ना हो तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ भी आपके नहीं हिल सकते, कोई चीज उठा भी नहीं सकते, कोई चीज पहुंचा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो आपका दिमाग उस काम में लगा हुआ है, लेकिन बाकी दिमाग जो है ना वो बस वॉन्डरिंग अराउंड है, लाइक बेसिकली डूइंग नथिंग, ठीक है ना। तो दरारें होती हैं दिमाग के अंदर, ये शैतान उन दरारों के अंदर घुस जाता है अपने वसाविस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने काम के अंदर इनग्रोस्ड नहीं होते बिल्कुल जो है ना वो। यानी भाई देखें, आप कहानी की किताब पढ़े ना, माशाल्लाह हमारे बच्चे, आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि इश्तियाक अहमद की नॉवेल पढ़ते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर आपने इश्तियाक अहमद की नॉवेल पढ़ी है या कोई और नॉवेल पढ़ी है, ठीक है ना, नॉवेल पढ़ते हुए आपके जहन में वसाविस आते हैं? नॉवेल पढ़ते हुए नहीं आते हैं ना, क्यों नहीं आते, क्योंकि नॉवेल के अंदर जो है ना वो आप दिलो दिमाग के तहत ना, कि आपके हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग मसरूफ है उसके अंदर, आपका दिमाग मसरूफ है उसके अंदर, कभी वसवसे नहीं आएंगे आपके। उसी तरह जो भी आप एक सिस्टम का काम कर रहे होते हैं ना, देखें दो वजूहात से इंसान का दिमाग मसरूफ हो जाता है, दो वजूहात से इंसान का दिमाग मसरूफ हो जाता है। एक वजह होती है कि उसको खौफ होता है, खौफ होता है कि अगर मैंने इस काम को ठीक नहीं किया ना, मुझे मार पड़ेगी, या मेरे खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, मुझे जो है वो फायर कर दिया जाएगा या मुझे जलील कर दिया जाएगा। जॉब से फायर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे जलील जरूर कर दिया जाएगा। ये खौफ होता है। अब जो है ना, इसके ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि बेतवज्जोही के साथ काम करे, क्योंकि इसको खौफ लगा हुआ है ना, ठीक है ना। जिसको खौफ नहीं होता ना, तो वो फिर बेतवज्जोही से काम करता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं होता भाई, मैं तो, मेरे तो बाप का की नौकरी है, मेरे बाप का जो है वो कंपनी है, या जो है मैं सऊदी हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता है ना, ये तो हुकूमत की तरफ से मुझे है, तो मुझे कोई कौन निकाल सकता है, तो उसको खौफ नहीं होगा ना, राइट। तो इसका दिमाग जो है ना, वो काम के अंदर मसरूफ नहीं होगा, क्योंकि इसको कोई खौफ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज जिसकी वजह से इंसान का दिमाग मसरूफ हो जाता है, वो अब आप बता दें। जैसे इश्तियाक अहमद की नावल, रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े माशाल्लाह नेक इंसान थे, हमारे हजरत से बैद भी थे, ठीक है। और आखिर में उन्होंने, आखिर में नहीं, वो शुरू में भी, उनकी नॉवेल्स जो है वो शराफत वाली नॉवेल्स होती थी, उसके अंदर बेहयाई नहीं होती थी, और बाद में तो माशाल्लाह दीनी मौजूआत के ऊपर उन्होंने अपनी नॉवेल्स लिखनी शुरू करी। दूसरी चीज, खौफ के बाद के अलावा दूसरी चीज क्या होती है जिसकी वजह से इंसान का दिमाग मसरूफ हो जाता है किसी चीज के अंदर? जिक्र कल्बी, मोबाइल। तो मोबाइल में क्यों दिमाग मसरूफ हो जाता है, जिक्र कल्बी में क्यों दिमाग मसरूफ हो जाता है? दूसरी चीज क्या है भाई, खौफ के बाद दूसरी चीज क्या होती है, उसको आप आसानी से शौक भी तो कह सकते हैं ना, शौक, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, मोहब्बत, चाहत, राइट। तो एक चीज होती है खौफ, जिसकी वजह से आपका दिमाग चीज के अंदर मसरूफ हो जाता है, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते बेतवज्जुही। और दूसरी चीज होती है शौक। जब शौक हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद अफोर्ड का मसला ही खत्म हो जाता है, फिर तो शौक ही शौक है। जैसे आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई टीवी का ड्रामा देख रहे हैं, जैसे आप कोई और इस किस्म की अपनी मशगूलियत के अंदर लगे हुए हैं, अब उसमें आपको कोई वसाविस नहीं आएंगे, कोई वसाविस नहीं आएंगे, क्योंकि आप शौक के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई, या तो खौफ के साथ काम करें या शौक के साथ काम करें। अगर इसके बगैर ना शौक है ना खौफ है, तो फिर तो हमारा जैसा मामला होता है, ना इधर के ना उधर के, ना खुदाई मिला ना विसाले से, ना ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। तो फिर शैतान जो है ना, वो हमारे दिमाग को अपनी आमाजगाह बना लेता है, और फिर वो हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना शाम, सुबह शाम, राइट। फुटबॉल जो है उसको लाते मारते हैं, तो शैतान भी हमारे दिमाग को लाते मारता है फिर उसके बाद, ठीक है। साहबा ऐसे नहीं करते थे, साहबा काम जो है ना, वो अल्लाह के खौफ और अल्लाह के शौक और जन्नत के शौक है, इन्हीं के साथ जो है वो हर काम करते थे, तो शैतानी वसाविस से उनको बहुत कम वास्ता पड़ता था, पड़ता भी था तो बस दे वर एबल टू गेट ओवर इट वेरी इजीली, ठीक है। तो चले, अब हमारी मजबूरी के इल्मी क्लास भी जो है वो भी फिर बन जाती है इस्लाही क्लास, लेकिन वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशाइख ने हमें जिम्मेदारी यही लगाई है, तो खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स से तो फिर काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो फिर चले, जहाँ तक पढ़ा है उतना अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए समझने की और उससे फ़ायदा हासिल करने की। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल ईमानु बैनुर रजा वल खौफ, ठीक।